2 दिन हो गए और ज्ञान शंकर ने राय साहब से मुलाकात न की। राय साहब उन निर्दय पुरुषों में न थे जो घाव लगाकर उस पर नमक छिड़कते हैं। वह जब किसी पर नाराज होते हैं तो यह मानी हुई बात है कि उनका नक्षत्र बलवान है। सौभाग्य चंद्र उनके दाहिने हैं, क्योंकि क्रोध शांत होते ही वह अपने कटु व्यवहारों का बड़ी उदारता के साथ प्रायश्चित किया करते थे। एक बार एक टालुए को इसलिए पीटा था कि उसने फर्श पर पानी गिरा दिया था। दूसरे दिन 5 बीघे जमीन से मुआफ़ी दे दी। ये कारिंदे से गबन के मामले में बहुत बिगड़े और अपने हाथों से हंटर लगाए, किंतु थोड़े ही दिन पीछे उसका वेतन बढ़ा दिया। हाँ, यह आवश्यक था कि चुपचाप धैर्य के साथ उनकी बातें सुन ली जाएं, उनसे बतपढ़ाव न किया जाए। ज्ञानशंकर को धिक्कारने के पीछे एक ही क्षण उन्हें पश्चाताप होने लगा। भय हुआ कि कहीं वह रूठ कर चल न दे। संसार में ऐसा कौन प्राणी जो स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा का हनन न करता हो। मैं खुद ही तो निष्प्रिय नहीं हूँ। जब संसार की यही प्रथा है तो मुझे उनका इतना तिरस्कार करना उचित न था। कम से कम मुझे उनके आचरण पद को कलंकित न करना चाहिए था। विचारशील पुरुष है, उनके लिए इशारा काफी है। लेकिन मैं गुस्से में आकर खुली खुली गालियाँ दी। अतएव आज वह भोजन करने बैठे तो महाराज से कहा, बाबूजी को भी यहाँ बुला लाओ और थाली भी यहीं लाओ। न आए तो कहना आप न चलेंगे तो वह भी भोजन न करेंगे। यहाँ शंकर राजी न होते थे, पर विद्या ने समझाया, चले क्यों नहीं जाते। जब वह बड़े होकर बुलाते हो तो न जाने में तो दुख होगा। उनकी आदत है कि गुस्से में जो कुछ मुझसे आए एक बग जाते हैं, लेकिन पीछे से लज्जित होते हैं। क्या शंकर अब कोई हीला न कर सके, रोनी सूरत बनाए हुए आए और राय साहब से जरा हटकर आसन पर बैठ गए। राय साहब ने कहा, इतनी दूर क्यों बैठे हो, मेरे पास आ जाओ। देखो आज मैं तुम्हारे लिए कई अंग्रेजी चीज़ें बनवाई हैं। लाओ महाराज, यहीं थाली रखो। ज्ञानशंकर ने तभी जवान से कहा, मुझे इस समय जरा भी इच्छा नहीं है, क्षमा कीजिए। राय साहब, इच्छा तो सुगंध से हो जाएगी। थाली सामने तो आने दो, महाराज को इनाम मैंने देने का वादा किया है, उसने अपनी सारी अकल खर्च कर दी होगी। महाराज ने थाली लाकर ज्ञानशंकर के सामने रख दी। ज्ञानशंकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, एक रंग आता था, एक रंग जाता था। छाती बड़े वेग से धड़क रही थी। भय ने आशा को दबा दिया था, वह किसी प्रकार यहाँ से भागना चाहते थे। यह दृश्य उनके लिए असहाय था। उनके शरीर पर एक एक अंग पर थरथर कांप रहा था, यहाँ तक कि स्वर भी भंग हो रहा था। उन्हें उस समय अनुभव हो रहा था कि जान लेना देने से कहीं दुस्तर है। राय साहब ने 4 ही 5 कौर खाए थे कि सहसा उन्होंने थाली से हाथ खींच लिया और ज्ञानशंकर को तीव्र और मर्मभेदी दृष्टि से देखा। ज्ञानशंकर के प्राण सूख गए। राय साहब ने यदि गोली चलाई होती तो भी उन्हें चोट न लगती, संज्ञाशून्य से हो गए। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई आकर्षण शक्ति प्राणों खींच रही थी। अपनी नाव को भंवर में डूबते पाकर भी कोई इतना भयभीत, इतना असावधान न होता। राय साहब की तीव्र दृष्टि ने सीधे कर दिया कि रहस्य खुल गया, सारे यत्न सारी योजनाएं निष्फल हो गई। हाँ, हाथ भाग कहीं का ना रहा। क्या जानता था कि यह महाशय ऐसे आत्मदर्शी हैं। इतने राय साहब ने आत्मासूचक भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि धन संपत्ति तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम जो चाले चलोगे वह सब उल्टी पड़ेंगे, केवल लज्जा और ग्लानि हाथ रहेगी। ज्ञानशंकर ने अज्ञान भाव से कहा, मैंने आपका आशा नहीं समझा। राय साहब, बिल्कुल झूठ है, तुम मेरा आशा खूब समझ रहे हो। इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो उसका परिणाम अच्छा न होगा। मैं चाहूँ तो सारी राम कहानी तुम्हारी जबान से कह पा लूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें बड़ा भ्रम हुआ, मैं तुम्हें बड़ा चतुर समझता था, लेकिन तुम जब यह विदित हुआ कि तुम्हारी निगाह बहुत मोटी है। तुम्हारी इतने दिनों तक मुझसे संपर्क रहा, लेकिन कभी तक मुझे पहचान न सके। तुम सिंह का शिकार बांस की तितलियों से करना चाहते हो, इसलिए अगर उसके दबोचने में आ जाओगे तो तुम्हारा अपना दोष है। मुझे मनुष्य मत समझो, मैं सिंह हूँ। अगर अभी अपने दांत पंजे दिखा दो तो तुम कांप उठोगे। यदि यह थाल 20-25 आदमियों को खिलाने के लिए काफ़ी है, शायद एक कौर खाने के बाद उन्हें दूसरे कौर की नौबत न आएगी। लेकिन मैं पूरा थाल हजम कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे माथे पर बल भी न दिखाई पड़ेगा, मैं शक्ति को पा सकूँगी। ऐसी वस्तु में मेरे लिए दूध और पानी है। यह कहते कहते राय साहब ने थाल से कई और कौर उठाकर जल्दी जल्दी खाया। अकस्मात ज्ञानशंकर तेजी से लपके थाल उठाकर भूमि पर पटक दिया और राय साहब के पैरों पर गिरकर बिलख बिलख रोने लगे। राय साहब की योग सिद्धि ने आज उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चूहे और सिंह की लड़ाई है। राय साहब ने उन्हें उठाकर बिठा दिया और बोले, लाला, मैं इतना कोमल हृदय नहीं हूँ कि इन आंसुओं से पिघल जाऊँ। आज मुझे तुम्हारा यथार्थ रूप दिखाई दिया। तुम अपना स्वार्थ के पंजे में दबे हुए हो, यह तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी धर्मविहीन शिक्षा का दोष है। तुम्हें किसी से ही बहुत ही शिक्षा मिली है, हृदय के भाव दब गए हैं। तुम्हारे गुरुजन स्वयं स्वार्थ के पुतले थे, उन्होंने कभी सरल संतोष में जीवन का यथार्थ तुम्हारे सामने नहीं रखा। तुम अपने घर में, स्कूल में, जगत में नित्य देखते रहे कि बुद्धि का कितना मान है। तुमने सदैव इनाम और पदक पाए, कक्षा में तुम्हारी प्रशंसा होती रही कि प्रत्येक अवसर पर तुम्हें आदर्श बनाकर दूसरों को दिखाया जाता था। तुम्हारे आत्मिक विकास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे मनोगत भावों को, तुम्हारे उद्गारों को सन्मार्ग पर ले जाने की चेष्टा नहीं की गई। तुमने धर्म और भक्ति का प्रकाश कभी नहीं देखा, जो मन पर छाए हुए तिमिर को नष्ट करने का भी साधन है। तुम जो कुछ हो अपनी शिक्षा प्रणाली के बनाए हुए हो, पूर्व संस्कारों ने जो अंकुर जमाया था उसे शिक्षा ने सघन वृक्ष बना दिया। तुम्हारा दोष नहीं, काल और दोष का देश का दोष है। मैं क्षमा करता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ कि तुम्हें सद्बुद्धि दें। राय साहब के ओठ नीले पड़ गए थे, मुख कांतिहीन हो गया, आंखें पथराने लगी, माथे पर श्वेत बिंदु चमकने लगा, पसीने से सारा शरीर तर हो गया, सांस बड़े वेग से चलने लगी। ज्ञानशंकर उनकी दशा देखकर विफल हो गए। कांपते हुए हाथों से पंखा झलने लगे, लेकिन राय साहब ने इशारा किया कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ रहने दो। तुरंत भीतर से द्वार बंद कर दिया। ज्ञान शंकर मूर्तिवत द्वार पर खड़े रहते तो मानो किसी ने पैरों को गड़ा दिया हो। उसी समय उन्हें अपने कुकृत्य पर इतना अनुताप हो रहा था कि जी चाहता था कि उसी थाल का एक कौर खाकर इस जीवन का अंत कर लूँ। भले राज साहब के अभिमानपूर्ण बातें सुनकर उन्हें आशा हो गई थी कि विश्व इन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब इस दशा के यह क्या हो रहा था कि उन्हें अपने योग शक्ति का भ्रमात्मक अनुमान किया था। क्या करूं, किसी डॉक्टर को बुलाऊं या धन लिप्सा इतना सत्यानाश हो जिससे मेरे में यह विषम प्रेरणा उत्पन्न की, जिसने मुझे यह हत्या कराई। हाँ कुटिल स्वार्थ, तुमने मुझे नरपिशाच बना दिया। मैं क्यों इतना शत्रु हो रहा हूँ? इसी जायदाद के लिए, इसी रियासत के लिए, इसी संपत्ति के लिए? क्या वही संपत्ति मेरे हाथों में आकर दूसरे को मेरा शत्रु न बना देगी? कौन कहता है कि मेरे भी यही अंत न होगा? ज्ञान शंकर ने द्वार पर कान लगाकर सुना। ऐसा जान पड़ा कि राय साहब का हाथ पर पटक रहे हैं और मारे भाई के ज्ञान शंकर को रोमांच हो गया। उन्हें अपनी अधम निजता, अपनी दुर्दशा, प्रशासनिक प्रवृत्ति पर ऐसा शोक पश्चाताप कभी न हुआ था। उन्हें इस समय परिणाम की चिंता न थी, न यह शंका थी कि मेरा क्या हाल होगा। बस यही धड़का लगा हुआ था कि राय साहब की न जाने क्या गति हो रही। कोई जबरदस्ती भी करता तो वह वहां से न हटते, मालूम नहीं एक क्षण में क्या हो जाए। इतने महाराज थाली में कुछ और पदार्थ लाया, उसे देखते ज्ञान शंकर का रक्त सूख गया। समझ गया कि अब प्राण न बचेंगे। यह दुष्ट अभी यहाँ का हाल देखकर शोर मचा देगा, खोज पूछ होने लगे कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस भय से उन्हें काल स्वरूप देख पड़ता था। उन्होंने समीप न आने दिया, दूर से कहा, हम लोग भोजन कर चुके, अब और कुछ न लाओ। महाराज ने बंद किवाड़ों को कौतूहल से देखा और आगे बढ़ने की चेष्टा की कि अकस्मात ज्ञान शंकर बाज की तरह झपटे और उसे जोर से धक्का देकर कहा, तुमसे कहता हूँ कि यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है, बात क्यों नहीं सुनते? महाराज हक्का बक्का होकर ज्ञान शंकर का मुंह ताकने लगा। ज्ञान शंकर इस समय उस शशंक दशा में थे जब कि मनुष्य पत्ते का खड़का सुनकर लाठी संभाल लेता है। उन्हें यह राय साहब की चिंता न थी, उन्हें अपने जीवन में चिंता के उद्घाटक शक्ति के बाहर हो गए थे। वह अब अपनी जान की खैर मना रहे थे। संपूर्ण इच्छा शक्ति इस रहस्य को गुप्त रखने में व्यस्त हो रही थी। एकाएक भीतर सुधार खुला, राय साहब बाहर निकले। उनका मुखड़ा रक्तमण हो रहा था, आंखें भी लाल थी, पसीने से तर थे, मानो कोई लोहार भट्टी के सामने से उठ खड़ा हो। दोनों थाल समेट कर रख दिए गए थे, कटोरे साफ थे, सब भोजन एक अंगीठी में जल रहा था, अग्नि उन पदार्थों का रस स्वादन कर रही थी। क्षण मात्र में ज्ञान शंकर विचारों ने पलटा खाया। अब तक उन्हें शंका थी कि राय साहब दम तोड़ रहे थे, तब तक उनकी प्राण रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब बाहर खड़े कर निश्चल हो गया कि राय साहब के प्राणांत हो गए, तब उनकी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अब उन्हें सामने देखकर क्रोध आ रहा था कि यह मर क्यों न गए, इतना तिरस्कार, इतना मानसिक कष्ट व्यर्थ सहना पड़ा। उनकी दशा इस समय उस थके मारे हलवाई किसी हो रही थी जिसके बैल खेत से द्वार पर आकर भिदक गए हों। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद सारी रात अंधेरे में बैलों के पीछे दौड़ने की संभावना उनकी हिम्मत तोड़ी डालती हो। राय साहब ने बाहर निकलकर कई बार जोर से सांस ली, मानो दम घुट रहा हो। तब कांपते हुए स्वर से बोले, मरा नहीं लेकिन मरने से बदतर हो गया। यद्यपि मैंने विष को योग क्रियाओं से निकाल दिया, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है मेरी धमनियों में रक्त की जगह कोई पिघली हुई धातु दौड़ रही है। यह दाह मुझे कुछ दिनों में भस्म कर देगी। अब मुझे फिर पोलो और टेनिस खेलना नसीब न होगा। मेरे जीवन की अनंत शोभा का अंत हो गया। यह जीवन में वह आनंद कहाँ जो शोक और चिंता को तुच्छ समझता था। मैंने वाणी से तो तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम मेरी लड़की हो, मेरे लिए पिता के तुल्य हो, मैं तुम्हें पिता के तुल्य हूँ, लेकिन अब हम एक दूसरे को मुँह नहीं देखेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे से तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह हमारे वर्तमान लोग व्यवहार का दोष है, किंतु यह जानकर भी हृदय को संतोष नहीं होता। यह सारी विडंबना इसी जायदाद का फल, इसी जायदाद के कारण हम और तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। संसार में जिधर देखो ईर्ष्या और द्वेष, आघात और प्रत्याघात का साम्राज्य है। भाई भाई का बैरी, बाप बेटे का बैरी, पुरुष स्त्री का बैरी, इसी जायदाद के लिए, इसी धन के लिए। इसके हाथों जितना अनर्थ हुआ हो रहा है और होगा, जिसके देखते कहीं अच्छा हो कि अधिकार की प्रथा ही मिठा दी जाती। यही वह खेत है जहाँ छल और कपट के पौधे लहराते हैं, जिसके कारण संसार और क्षेत्र बना हुआ है। इसी से मानव जाति को पशुओं से भी नीचा गिरा दिया है। यह कहते कहते राय साहब की आंखें बंद हो गई। वह दीवार का सहारा लिए वे दीवान खाने में और फर्श पर गिर पड़े। ज्ञान शंकर पीछे पीछे थे, मगर इतनी हिम्मत न पड़ी कि उन्हें संभाल ले। नौकरों ने हालत देखी तो दौड़े और उन्हें उठाकर कुछ पलटा दिया। गुलाब और केवड़े का जल छिड़कने लगा, कोई पंखा करने लगा, कोई डॉक्टर के लिए दौड़ा। सारे घर में खलबली मच गई। दीवान खाने में ऐसा मेला लगा था, 10 मिनट के बाद राय साहब ने आंखें खोली और सबको हट जाने का इशारा किया। लेकिन जब ज्ञान शंकर भी औरों के साथ जाने लगे तो राय साहब ने उन्हें बैठने का संकेत किया और बोले, यह जायदाद नहीं है, इसे रियासत कहना भूल है, यह निरी दलाली है। इस भूमि पर मेरा क्या अधिकार है? मैंने इसे बाहुबल से नहीं लिया। नवाबों के जमाने में किसी सूबेदार ने इस इलाके की आमदनी वसूल करने के लिए मेरे दादा को नियुक्त किया था। मेरे पिता का भी नवाबों की कृपा दृष्टि बनी रही। इसके बाद अंग्रेजों का जमाना आया और यह अधिकार पिताजी के हाथों से निकल गया। लेकिन राज विद्रोह के समय पिताजी ने तन मन से अंग्रेजों की सहायता की, शांति स्थापित करने पर हमें वही पुराना अधिकार मिल गया। यही इस रियासत की हकीकत है। हम केवल लगान वसूल करने के लिए रखे गए हैं। इसी दलाली के लिए हम एक दूसरे के खून की इतने मांग रखते हैं। इसी दिन हत्या को हम रोक कहते हैं, इसी कारंदगी को हम फूले नहीं समाते। सरकार अपना मतलब निकालने के लिए हमें इस इलाके का मालिक कहती है, लेकिन जब साल में 2 बार हमसे मालगुजारी वसूल की जाती है तब हम मालिक कहाँ रहे? यह सब धोखे की टट्टी है, तुम कहोगे तो सब कोरी बकवाद है। रियासत इतनी बुरी चीज़ है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, यही तो रोना है कि रियासत में हमें विलासी, आलसी और अपाहिज बना दिया। हम अब किसी काम के नहीं रहे, हम फालतू चिड़िया हैं। हमारे पंख शक्तिहीन हो गए हैं और हमें उड़ने के सामर्थ्य नहीं है। हमारी दृष्टि सदैव अपने पिंजरे की कुल्लियों और प्याली पर रहती है। हमने अपनी स्वाधीनता को मीठे टुकड़े पर बेच दिया है। राज साहब के चेहरे पर एक दूसरा आंतरिक वेदना के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। लेटे थे, करार आए उठे थे, मुखाकृति विकृत हो गई थी। पीड़ा से हृदय विकल हाथ रखे हुए बोले, आह बेटा, तुमने एक हलाहल खिला दिया और कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए जाते। अब प्राण न बचेंगे। अगर एक मरणासन्न पुरुष के शाप में कुछ शक्ति है तो तुम्हें इस रियासत का सुख भोगना नसीब न होगा। जाओ, आंखों के सामने से हट जाओ। संभव है कि इस क्रोध अवस्था में तुम्हें दोनों हाथों से दबाकर मसल डालूं। मैं अपने आपे में नहीं हूँ, मेरी दशा मतवाले सर किसी हो रही है। मेरी आंखों से दूर हो जाओ और कभी मुंह मत दिखाना। मेरे मर जाने पर तुम्हें अपने आने का अख्तियार है। और याद रखो कि अगर तुम फिर गोरखपुर गए या गायत्री से कोई संबंध रखा तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। मेरे दूत परछाई की भांति तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। तुमने इस चेतावनी का जरा भी उल्लंघन किया तो जीते न बचोगे। हाय, शरीर फूका जाता है, पापी दुष्ट अभी गया नहीं। शेख खां, कोई है? मेरी पिस्तौल लाओ, चिल्ला कर मेरी पिस्तौल लाओ। क्या सब मर गए? ज्ञानशंकर तुरंत उठकर वहां से भागे, अपने कमरे में आकर द्वार बंद कर लिया। जल्दी से कपड़े पहने, मोटरसाइकिल निकलवाया और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर चले। विद्या से मिलने का भी अवसर न मिला।